नमस्कार, ब्रह्म कुमारीज की फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है। नाम है इसका पीनेटेन सीरीज। पिछले लगभग डेढ़ महीने से भी अधिक समय से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। ये ब्रह्म कुमारीज का स्पेशल आउटरीच है। इस बदलते हुए दौर में बहुत कुछ बदला है। कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने इस बदलाव को बहुत अच्छी तरीके से डील किया है, बट हम में से कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको इन बदलावों को लाने में थोड़ी मदद की जरूर महसूस हुई है। मुद्दा हमारा कैसा भी क्यों ना हो, मगर इस बदलाव को हम अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर दिन हमारे पास एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस बदलाव के समय में हमें कोप अप करने के लिए अपने टिप्स ऑफर करते हैं, हमें गाइडेंस ऑफर करते हैं, स्पिरिचुअल विजडम भी ऑफर करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही जाने माने विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी हैं, जो मुंबई से हमारे साथ आज जुड़े हैं। पिछले अनेकों कई दशकों से वो ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हैं और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते लाखों लोगों ने उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज ये खुशी की बात है कि आज वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में।
थैंक यू जी।
डॉक्टर पटेल, जैसे ये जो पिछले कुछ समय से जो बदलाव का वक्त आया है, दीस चेंजिंग टाइम्स, बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा है। ये लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये जो बदलते हुए वक्त के साथ WHO ने गाइडलाइंस इश्यू किए, कल गूगल के होम पेज पे भी ये लिखा था कि बी काइंड टू योर माइंड। तो उसपे कुछ लिखे गए थे कि आप अपने माइंड को थोड़ा काइंडनेस के साथ डील करें। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आज के समय में अपने मन के प्रति जागरूक होना क्यों आवश्यक है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी काइंड टू आवर सेल्फ?
अच्छा, वेरी गुड। एक्चुअली तो हर परिस्थिति में व्हाई वी शुड बी काइंड टू आवर माइंड, क्योंकि हर परिस्थिति में कोई ना कोई फायदा होता है। कहते हैं ना, परिवर्तन तो संसार का नियम है, और जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, चेंज फास्ट हो रहा है। प्रेजेंट पैंडेमिक में भी चेंज फास्ट हो गया एकदम, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर हमारी अवेयरनेस अच्छी होगी, व्हेन यू आर काइंड टू योर माइंड, योर अवेयरनेस विल बी गुड। आप अपने आप को अच्छे से इंटरनलाइज कर पाएंगे, और अगर आप अपने आप को अच्छे से इंटरनलाइज कर पाएंगे तो आप जान पाएंगे कि भी इस परिस्थिति का भी फायदा हमें कैसे लेना है। मैंने कई प्लेटफॉर्म पे इन दिनों कहा है कि भी प्रेजेंट पैंडेमिक में भी बहुत सारे फायदे हुए। देखो, सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ कि भी पहले हम इतना फ्रीक्वेंटली हाथ नहीं धोते थे। पहले देखो, बहुत सारे लोग थे भी खाना खाने से पहले भी अच्छे से हाथ नहीं धोते थे। अभी हम बहुत बार हाथ धोने लगे, देखो हाथ हमारे अच्छे हो गए, है ना। बहुत अच्छा एक फायदा हो गया एक्चुअली, देखो तो, है ना, कि अभी हमें अपने लिए ज्यादा टाइम मिल गया। पहले हम इतने व्यस्त थे, हमें अपने आप के लिए टाइम नहीं था। ये जो अभी काइंड टू योर माइंड, अभी हम अपने आप के बारे में सोच सकते। मैं सच बताता हूं, मैंने भी खुद अपने आप के बारे में बहुत कुछ सोचा इन दिनों कि भी क्या हो सकता है ना, अपने आप में हमें क्या चेंज लाना है। कि पहले मैं सोचता था, ये फैक्ट है, 100% फैक्ट, कि पहले आधा घंटा वॉकिंग करना मुझे मुश्किल लगता था। अभी इन दिनों में कई बार देखा कि ढाई घंटा, तीन घंटा एक्सरसाइज हो गई। जो स्मार्ट वॉच होती है ना, कि जो दिखाती है कि हाउ मच, कितना आपने पैदल किया, तो ऑलमोस्ट 15,000 स्टेप भी हो गए, विच वॉज इम्पॉसिबल अर्लियर। सोच ही नहीं पाते थे हम, क्योंकि अभी हम फ्री है। और देखो, एक अच्छी सी बात हो गई कि पहले तो हम सब जो बाहर जाते थे, फिर हमारी सोसाइटी ने एक अजीब सा नियम बनाया कि भी सोसाइटी में भी पैदल नहीं करने का। इट इज अ ह्यूज बिल्डिंग वेयर आई स्टे, तो सोसाइटी में भी आप बहुत पैदल कर सकते। लेकिन एक दिन ऐसा उन्होंने नियम बनाया, क्योंकि किसी को कोरोना हो गया, तो बोला कि अभी सोसाइटी में भी पैदल नहीं करने का। तो देन नो आई स्टार्टेड फर्स्ट तो फ्यू डेज नो इन दैट देर इज नो इन साइड देर इज सम स्पेस, फिर घर में। एक दिन ऐसा विचार आया कि जो वॉकिंग शूज होते हैं ना, हम घर के लिए चप्पल लेते कि जो घर में पहनते, बाहर नहीं पहनते, तो हम घर के लिए एक शूज ले ले, एक शूज लिए जो घर में पहनने के। तो आज ही हुआ, घर में ही हो गया 10,000 स्टेप्स. दिस इज जस्ट अ लिटिल व्हेन यू आर काइंड टू योर माइंड. बहुत कुछ हम इंटरनलाइज करके अच्छा सोच सकते हैं और अपने में चेंज आ सकता है. दिस इज जस्ट पार्टली आई हैव टोल्ड यू, व्हेन यू आर काइंड टू योर माइंड बहुत कुछ हो सकता है. और ये बदलाव अच्छा ही है वास्तव में. जी जी,
ये जो आपने बात कही कि ये बदलाव अच्छा है, ये मान लेना बहुत जरूरी होता है. बहुत बार हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं
करते. फ्यू थिंग्स आर अनएविटेबल, फ्यू चेंजेस आर अनएविटेबल. उसमें वी हैव टू एडजस्ट टू इट. कहीं जैसे कि पहले आप देखना, मेरी एक कजिन ब्रदर है, उनका वो पता है कि जो क्या बोलते कि वीडियो लाइब्रेरी होती थी ना, कैसेट्स, वीडियो कैसेट की लाइब्रेरी थी, एंड उससे वो ठीक ठाक कमा लेते थे. अभी वो जीरो हो गया है ना. अभी बिल्कुल ही हैड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स फॉर हिज लाइवलीहुड. तो ऐसे वो चेंज हो सकता है पूरा, है ना. तो अपने को ना वी शुड बी रेडी कि भी कुछ भी चेंज आएगा उसके लिए हमको तैयार रहना है.
जी, मैं पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ. हमारे कुछ दोस्त प्रोग्राम में हमारे साथ
एलिवेटेड ने कुछ कोई प्रश्न पूछे, थॉट्स में कौन सा थॉट्स होता है.
जी, मैं देख सकता हूँ वो प्रश्न है हमारे सामने. लक्ष्मी जी का प्रश्न है. मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारे दोस्त इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई शाउट आउट है या कोई भी चीज आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उन चीजों को हम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं. आप कमेंट्स में यहाँ पर लिख सकते हैं और उन कमेंट्स में से कुछ चीजों को मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब के सामने प्रश्न के रूप में पूछूंगा. अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है ये प्रश्न प्राइवेट है, जहां पर आप यहाँ पर नहीं पूछना चाहेंगे, आपका नाम आपको प्राइवेट रखना है, तो आप ऐसे प्रश्नों को socialmedia@brahmakumaris.com पर ईमेल कर सकते हैं, जहां पर हम आपके नाम को प्राइवेट रखेंगे और आपके प्रश्न को फिर भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे. तो शो में जो भी आप सवाल पूछते हैं उनमें से कुछ सवालों को मैं डॉक्टर साहब से डायरेक्टली पूछूंगा, बाकी आपके कमेंट्स वगैरह को आप स्क्रीन में देख पाएंगे. डॉक्टर, पहला प्रश्न हमारे साथ लक्ष्मी पाल पूछते हैं और वो पूछते हैं जी एलिवेटेड थॉट्स में कौन से थॉट्स आते हैं, वो पूछते हैं इसके बारे में.
जी जी जी, मैंने इसको एलिवेटेड थॉट्स, अभी जैसे नहीं जो भी पूछ रहे ना उन्होंने मेरे लेक्चर सुने कहीं. मैं 8 प्रकार से थॉट्स को डिवाइड करता हूँ कि भी टॉक्सिक थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स, राइट थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स और फिर है जीरो थॉट्स. तो एलिवेटेड थॉट्स को पूछ रहे हैं. एलिवेटेड थॉट्स वो है, पॉजिटिव थॉट्स से भी वो अलग है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स में सिर्फ हम इवेंट की पॉजिटिविटी को ही ढूंढते हैं. अभी ये एलिवेटेड थॉट वो है कि वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, वो हमें एलिवेट करते हैं. जैसे ना कि जब कोई भी शटल है वो स्पेस में जाता है तो वो एलिवेट होता है, वो ग्रेविटी से अबाउ जाता है. तो ऐसे थॉट कि जो हमें देह और देह भान से परे ले जाते हैं वह एलिवेटेड थॉट है. जैसे कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं यह शरीर से परे एक दिव्य चेतना हूं, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, वह एक प्रकार से एलिवेटेड थॉट हो गया क्योंकि आपको देह भान से परे ले जाएगा. मैं शांत स्वरूप हूं, वह भी एक एलिवेटेड थॉट है, आपको देह भान से परे ले जाएगा. ऐसे ही मेडिटेशन के भी थॉट्स कि भी परमात्मा शांति के सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आपको देह भान से परे ले जाएगा, वह भी एक प्रकार से एलिवेटेड थॉट है. तो ऐसे जो मेडिटेशन से रिलेटेड थॉट्स है वह सारे एलिवेटेड थॉट्स है. और अगर फिजिक्स की भाषा में कहे तो जिसको कहते हैं टू एंटेंगल विथ गॉड, एक एंटेंगलमेंट होता है कि दो फोटॉन्स को, दो एटम्स को एंटेंगल किया जाता है. तो टू एंटेंगल विथ गॉड इज ऑल्सो अ एलिवेटेड थॉट कि जो हमको ये जो भी देह और देह की दुनिया है उससे परे ले जाता है. ठीक है, थैंक यू
जी. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब,
मैं अगले
प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अगले प्रश्न हमारे
दोस्त
शांति, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे कमेंट्स भी लिख सकते हैं, जो कमेंट्स हम स्क्रीन पे लेंगे और आपके प्रश्न भी हम स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे एक फ्रेंड है, ये चिल्ड्रन प्रधान है और ये पूछते हैं, आई फील लो एंड गेट एजिटेटेड इजिली एंड हैव नो कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। ऐसे बहुत सारे दोस्त ऐसा फील कर रहे हैं जो आजकल के दिनों में अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं और इजीली एजिटेट हो जाते हैं, तो वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है ऐसा महसूस करते हैं, उन दोस्तों के लिए क्या गाइड करना है?
मतलब ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, सदा के लिए हो सकता है कि कहीं लोग है कि जल्दी जल्दी है ना लो फील कर लेते हैं, है ना, कि भी थोड़ी सी बात में वो अपने आप को लो फील कर लेते हैं, है ना, क्योंकि है ना अभी उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहीं ये कारण तो है कि जिनके ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है, कि भी अच्छा फील करने के लिए उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है, कि जब वो बहुत चीज मिले ना तभी वो अच्छा फील करते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक पेशेंट आया कि भी उसको डिप्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि भी वो वैकेशन में ना सिंगापुर घूमने जाएंगे, अभी ये वैकेशन वो सिंगापुर घूमने जा नहीं पा रहे, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन बड़ा था। अच्छा, कईयों का एक्सपेक्टेशन है ना छोटा सा ही होता है। ये उदाहरण मैंने कई बार बोला, ये सचमुच इट्स अ रियल स्टोरी, अभी पेंडेमिक में ये टीवी में भी आया है कि भी अभी ये कई लोग है ना घर निकल पड़े थे, बेचारे उनके पास कुछ भी नहीं था, तो एक गरीब व्यक्ति बंबई से नासिक जाने के लिए घर निकल पड़ा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और एक टीवी जर्नलिस्ट ने ही उसको पट्टी आदि बंधाई और फिर भी वो आगे चला। फिर दो दिन के बाद वापस उसको रास्ते में मिल गया, तो पट्टी टूट भी गई थी और वो रास्ते में कुछ खा रहा था, किसने दिया होगा थोड़ा बहुत खाना, वो बैठ के खा रहा था। तो फिर से उसने पूछा कि हाँ लगता है वही व्यक्ति है, उसको पूछता हूं कि कैसा लग रहा है, तुम कैसे हो, तुम्हारी पट्टी टूट गई? बोलता है कोई बात नहीं साहब, ये तो ठीक हो जाएगा। फिर बोलता है कैसे लगता है, डिप्रेशन नहीं लगता? कहते नहीं नहीं साहब, हंसते खेलते मैं नासिक पहुंच जाऊंगा। आई वॉज रियली सरप्राइज कि भी हम लोग घरों में डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ये बंदा रास्ते में चल रहा है, कहां सोया होगा मालूम नहीं, क्या खाया होगा मालूम नहीं, बेचारे को लगा है दर्द हो रहा होगा, वो भी बोल रहा है कि हंसते खेलते मैं नासिक पहुंच जाऊंगा। तो भी ये है अच्छा फील करना, है ना। तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो, कंपेयर नहीं करो, ज्यादा कंपेयर ना करे, बोले ना कुछ बेसिक्स बनाने का। अगर आप कुछ ऐसा बनाओ कि मेरे पास खाने को दो टाइम है, रहने को ठीक से घर है, और तो मैं पॉजिटिव सोच सकता हूं, मेडिटेशन कर सकता हूं, है ना। स्वमान अच्छा है ना तो भी दिक्कत नहीं है, जिनका स्वमान अच्छा है वो भी जल्दी से लो फील नहीं करते। ये थोड़ा सा जेनेटिक हो सकता है, कहीं कैसे जीन से ना वो जल्दी लो फील करते, लेकिन फिर भी अगर वो मेडिटेशन करे तो एपिजेनेटिक्स एक पूरी फील्ड है कि आप जीन्स को भी ऊपर उठ करके निराशा को फील नहीं करेंगे, लो फील नहीं करेंगे। तो ऐसे थोड़े से एफर्ट की जाए, पॉजिटिव अप्रोच लिया जाए, आप कुछ अंडरस्टैंडिंग करो तो लो फील, जरूरत हो तो मेडिटेशन मेडिसिन भी ले सकते, नहीं मेडिसिन खराब नहीं होती है। कईयों के मन में यह डर होता है कि ये मेडिसिन सदा के लिए लेनी पड़ती है, ये मेडिसिन सदा के लिए नहीं लेनी पड़ती है, एक कोर्स होता है। जैसे ना कि भी आपको सर्दी हुई तो 7 दिन का कोर्स है, टीबी हुआ तो 9 महीने का कोर्स है, ऐसे ही अगर आपको डिप्रेशन हुआ तो थोड़े टाइम का कोर्स है। उल्टा कई बार कोर्स नहीं लो ना तो दिक्कत होती है, समझे ना। हाँ, तो प्रॉपर कोर्स कर लो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं।
जी, धन्यवाद डॉक्टर। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। फेसबुक से हमारे साथ सोनम जुड़े हैं और सोनम प्रश्न पूछते हैं, आई हैव अ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील लाइक आई विल लूज माय लव्ड वंस एंड आई वांट टू नो व्हाट शुड आई डू टू रिमूव द नेगेटिविटी एंड हाउ डू आई ओवरकम द फियर ऑफ लूजिंग माय
लव्ड वंस। परफेक्ट।
प्रश्न ये है कि परिवार के जो प्रियजन है उनको खो जाने की चिंता है, तो उस चीज की जो नेगेटिविटी है उस चीज को मैं कैसे हटाऊं, और इस फियर को जो मैं अपने लव्ड वंस को खो दूंगा या खो दूंगी, जो फियर है उस चीज को मैं कैसे ओवरकम करूं, ये प्रश्न।
जिससे ना ये एक चीज सदैव याद रखनी चाहिए कि वह चीज करो जो आपके कंट्रोल में है। अपने लव्ड वंस को नहीं खोना वो अच्छी चीज है, उनके लिए कुछ कोशिश करना वह भी अच्छी चीज है ना, वह भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ फियर से वो अच्छे नहीं होने वाले हैं। उनके लिए कुछ आप अच्छा करेंगे, जैसे भी आपके बच्चे हैं तो उनके लिए हेल्दी खाना बनाएंगे तो अच्छे होंगे, है ना, उनकी अच्छे से संभाल करेंगे तो वह हेल्दी होंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो वह हेल्दी होंगे, उनसे अच्छे संबंध रखेंगे तो वह हेल्दी होंगे, है ना, ये सब चीजें अच्छी करेंगे तो वह हेल्दी होंगे, नहीं तो कुछ हेल्दी होने वाले नहीं। तो इसलिए ये सोचो कि मेरे कंट्रोल में क्या है। और एक चीज, ये सब तो बहुत कुछ कंट्रोल में हो सकता है, परंतु तो और एक चीज कंट्रोल में हो सकती है कि उनके लिए आप मेडिटेशन करो, थोड़ा ध्यान करो और अच्छे वाइब्रेशन उन तक पहुंचाओ, तो उनको अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। अगर सपोज आवश्यकता है कि भी उनको कुछ और गाइडलाइंस देने की, तो वहां कुछ कर सकते हैं। आपके बच्चे तो उनको अच्छे मित्र ढूंढने में कहीं आप मदद रूप हो सकते हैं। तो बस ऐसे क्यों ना बहुत लंबा सा लिस्ट बनाओ कि आपके कंट्रोल में क्या है। और कई बार उनका ज्यादा वो डरने से उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चों के बारे में डरेंगे, बच्चों को बार 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 फोन करेंगे तो उल्टा बच्चे आपसे डिस्टर्ब होंगे। बच्चों को गाइडलाइंस दो कि आप बाहर गए हैं, आपको अगर 6 बजे आने का बोल के गए, आपको 6:15 हो रहे तो हमको फोन कर देना, तो बच्चे फोन कर देंगे, है ना। लेकिन फिर वो सोचना कि कुछ तो नहीं हो गया होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, उससे कोई फायदा नहीं बेटा। उस समय हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देना है, कुछ काउंसलिंग देना है, उससे आपको मदद मिलेगी, न कि डरने से, यह सोचने से भी कि भी मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा पॉजिटिव हूं, जितना मेरे में पॉजिटिविटी आएगा, जितना मेरे में एनर्जी आएगी, उतना मैं अच्छा होने वाला हूं। थैंक यू
जी। ये जो पॉजिटिविटी के बारे में आपने बात कही कि हमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट देना चाहिए, बुरा ना हो जाए ये नहीं सोचना है, बट कुछ अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी से बहुत हेल्प मिलती है। अगला प्रश्न हमारे साथ एक दोस्त पूछते हैं, इनका नाम है डुगू, और डुगू हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, और वो पूछते हैं सर जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो पहले से ही यही लगता है कि बिगड़ ना जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, ऑल नेगेटिविटी कम्स, हाउ टू डील विद दैट। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ भी हो सकता होगा कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो कभी कभार लगता है कि शायद मेरे से होगा या नहीं होगा, तो फेल्यूर का फियर होता है। तो इस नेगेटिविटी को हम कैसे डील करें कि काम शुरू करते ही ये नहीं लगे कि काम बिगड़ ना जाए, मैं फेल ना हो जाऊं।
एक्चुअली कि भाई ये सोचने से कोई आपके मार्क अच्छे आने वाले नहीं है। आप एग्जाम के लिए ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छे मार्क आएंगे, है ना, परंतु आप डरने से तो उल्टे कम मार्क आएंगे। मैं बहुत बार एग्जाम्पल देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने 60% का प्रिपरेशन किया है तो 60% आएंगे, आप डरेंगे तो शायद 55% आएंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब उस रात जो पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 महीने पहले जो पढ़ा है कहीं बार वह भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए उस रात तो आपको रिलैक्स होना है। मैं तो ये कहता हूं कि उस रात 6 घंटा जरूर सो और माइंड को पीसफुल रख करके फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाओ। तो इसलिए डर से आपको 0.1% भी ज्यादा नहीं मिलने वाला, उल्टा कम मार्क मिलने वाला है। और अभी करेंगे कैसे, कहते हैं कि डर की सबसे अच्छी दवाई है उसका सामना करना। एक बार जोर से भी बोलो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, यस 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 आई एम कॉन्फिडेंट, यस यस यस, ऐसे थोड़ा जोर से बोल के भी, जिसको हम लोग एक फेरी टेक्निक बोलते हैं, उससे भी आप कॉन्फिडेंस को भर सकते हैं। मैं आत्मा भी शक्ति स्वरूप हूं, ऐसा स्वमान भी आप दे सकते हैं कि मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हूं, मैं पावरफुल हूं, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। थैंक यू
जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ. अगला सवाल जो है हमारा वो ऐश्वर्या मचकाले पूछते हैं. ऐश्वर्या हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं. वो कहते हैं, व्हेन आई एम डूइंग एनी टास्क माय थॉट स्पीड्स इंक्रीज एंड आई ऑल्सो हैव फियर इन माई माइंड. ड्यू टू दिस आई फील माई सेल्फ डिस्टर्ब एंड इट इफेक्ट्स माई परफॉर्मेंस. What should I do to think less? जब भी मैं कोई काम करता हूँ, शुरू करता हूँ, तो मेरे thoughts की speed बहुत ज्यादा हो जाती है और इसकी वजह से मैं मन के अंदर एक डर भी पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से मैं बहुत disturb होता हूँ और वो मेरे performance को भी इफेक्ट करता है. तो पूछते हैं कि मैं
समझे मैंने जो बोला उसके अलावा मैं बोलना चाहता हूँ कि भी वर्तमान में जियो, एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचो कि भी क्या एंड रिजल्ट होगा, बस मुझे अच्छा करना है. और एक वाक्य भी याद रखिए कि परफेक्शन इज पैरालाइजिंग, एक्सलेंस इज अचीवेबल. कि मुझे बस अच्छा करना है और अच्छा करते 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 वो और भी अच्छा होगा, है ना. ज्यादा टेंशन ले जाएंगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट होंगे उसके अंदर. तो बस मुझे प्रेजेंट में जीना है, माइंडफुली करना है. कई बार परफॉर्मेंस क्या डाउन होता है, क्योंकि जब कर रहे हैं ना तभी सोचते हैं कि गड़बड़ हुई तो, मिस्टेक हुई तो क्या होगा, बॉस क्या बोलेगा, सामने वाला क्या कहेगा. वो कुछ भी नहीं, बस मुझे मेरी जो कैपेसिटी है ना उसका अच्छा करना है. और पीसफुली जब करते हैं तो उल्टा अच्छा होता है. और एक डिटैचमेंट भी हेल्प करता है. डिटैच होके करो ना, कि मैं डिटैच और मैं कर रहा हूं तो और भी अच्छा होगा. और जब अटैच होके करते हैं ना तो और अच्छा नहीं होता. आप देखना कि सर्जन बहुतों का ऑपरेशन करेगा लेकिन अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने बच्चों से अटैचमेंट है. मतलब मैं अपने बच्चों का ऑपरेशन अच्छा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अटैचमेंट है. तो ऐसे ही कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो काम में अटैच नहीं होने, हमको डिटैच होना है तो आप अच्छा काम कर पाएंगे. और प्रेजेंट में जीना है एंड जस्ट आई नो एंड आई एम एंजॉयिंग डूइंग इट, ऐसा भी कुछ. तो काम करने का अगर आपको आनंद आएगा ना तो क्या होगा कि आप थकेंगे नहीं. आज कई बार तो ये देखा है कि आप ऑफिस में जाते हैं 11-12 बजे व्यक्ति थक गया, क्योंकि आप वहां नहीं अटैच होके ही गए, सवेरे से ही टेंशन में जी रहे. लेकिन आप डिटैच होके जाएंगे शाम को 8 बजे तो भी थके नहीं. जी जी थैंक यू
जी. ये जो बात आपने हाँ. कही कि सवेरे दिन की शुरू के टाइम भी डिटैच होके जाए, बहुत ही अच्छी चीज
है. मेडिटेशन करके जाओ. आज उठते ही है ना, हमारे पास कहीं पर तो नेगेटिव होता है, उठते ही व्यक्ति नेगेटिव न्यूज आता है, है ना. स्टिम्युलेंट उठते ही चाय पीते हैं हम, स्टिम्युलेंट्स आ गए, उल्टा ना आप एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो बढ़ाने के बदले. उठते ही आप थोड़ा भी मेडिटेशन करो, योग करो, तो और आपकी एनर्जी बढ़ेगी.
जी जी बहुत ही अच्छी बात है. मैं समझता हूँ ये हमारे सभी दोस्तों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमें दिन की शुरुआत से ही तैयार कर सकती है. और में हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव बदलाव हम जरूर ला सकते हैं. एक और प्रश्न है जो हमारे दोस्त हमारे साथ लाइव पूछ रहे हैं, उस प्रश्न को मैं लेना चाहूंगा.
लॉस्ट माय फादर मैं भी पढ़ रहा हूँ 24.
तो ये प्रश्न
आप भी पढ़िए भले. हाँ हाँ
जी. आई लॉस्ट माई फादर इन एन एक्सीडेंट इन 2014. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई फील लाइक आई लॉस्ट अ माउंटेन लाइक सपोर्ट. I will be strong only if someone stands behind me physically or emotionally. How should I deal with this situation? The same happened with my father when he lost my grandfather. I observed my father that he became a strong person only if anyone present behind him supporting mentally and emotionally. So ek pattern dekh rahe hain unke father ke death ke baad se ki unko koi supporting mechanism jab milta hai तभी वो अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं. और वो अपने फादर के अंदर भी यही चीज देखते थे, इसके लिए उनको लगता है कि शायद मुझे भी इस चीज की आवश्यकता है. आप कैसे
गाइड करेंगे? ये अगर फिजिकल पर डिपेंड करें तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है. समझो आपके 8-10 फिजिकल सपोर्ट्स है, बट समटाइम्स दे मे बी बिजी. इसलिए मैं समझता हूं कि स्पिरिचुअल सपोर्ट रखना चाहिए एंड गॉड इज द बेस्ट सपोर्ट. और गॉड मतलब मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा. आप शायद है ना रिलीजन में विश्वास न भी करते हो फिर भी आप स्पिरिचुअल बन सकते. मैंने काफी इस पर कोशिश की है स्टडी करने की कि गॉड इज एन एनर्जी और साइंटिफिकली भी ये ट्रू है कि देर इज सम पावर देर इज सम एनर्जी नो विच इज अनसीन. जैसे अभी नहीं प्रेजेंट पेंडेमिक में भी कहते हैं ना कि भी कोरोना इज अनसीन एनिमी. तो गॉड इज अनसीन फ्रेंड. वो एक जो मित्र जिसको हम देख नहीं सकते उसको सचमुच अपना मित्र बनाओ और उसको मित्र बना के सदैव साथ रखो तो उसका जैसा सपोर्ट कोई नहीं. एंड मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये कल्पना नहीं है कि हर ऐसी भी परिस्थिति हो भगवान को हम साथ रख सकते हैं. मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है. इवन है ना रिलेटिव्स आके बताते जब पेशेंट ठीक हो जाते हो तो रिलेटिव बोलते डॉक्टर आपकी दवाई ने ठीक नहीं किया क्योंकि ये दवाई है तो आगे भी कोई डॉक्टर ने दी थी. मे बी नो सम स्पिरिचुअल पावर हैज क्योर्ड दिस पेशेंट. तो आई थिंक जब देते समय में हमेशा ये तो इतनी प्रैक्टिस ही है कि जब पूरी हिस्ट्री सुन लेते हैं ना फिर देन नो आई मेडिटेट. मे बी पेशेंट को मालूम नहीं पड़ता है इंटरनली एज इफ नो दैट स्पिरिचुअल एनर्जी इज गाइडिंग. कि भी मैंने लॉजिकली भी कोशिश की सारी बात को समझने की क्योंकि हमारी फील्ड में जो उनकी हिस्ट्री है वो जो बात बता रहे उसके आधार से निर्णय करना है. फिर एक स्पिरिचुअल एनर्जी को भगवान को भी पूछते कि व्हाट कैन बी द बेस्ट. और कई बार हमने देखा है कि जो लॉजिकल उत्तर मिलता है उससे ज्यादा स्पिरिचुअल उत्तर राइट होता है और जब वो दवा देते हैं तो पेशेंट क्योर हो जाते. तो नहीं इस प्रकार से अगर पूरा किया जाए तो देन नो दैट कैन बी द बेस्ट रिजल्ट. तो वी शुड टेक सपोर्ट फ्रॉम गॉड आई थिंक रादर देन ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग का मिले तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन कई बार क्या ह्यूमन बींग में भी बिजी और फिर उल्टा हम डिस्टर्ब होते कि भी अरे दो दिन हुआ है आज नहीं आया. तो उससे अच्छा भी जब है तो भी ठीक है नहीं है तो भी ठीक है. वो स्टेट ऑफ माइंड बने ना तो फिर क्या कि सदैव आप खुश रहेंगे. जो कहे कि भी हम डिपेंडेंसी हो जाती है डिप्रेस होते वो नहीं होगा. जी जी
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. मैं समझता हूँ कि ये फिजिकल डिपेंडेंस जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. हमेशा लोग हमारे आसपास नहीं हो सकते बट कभी कभार अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम उस इनविजिबल फ्रेंड को यूज करने लगे तो फिर तो शायद बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. अगला प्रश्न मैं
पॉसिबल है इट्स आई एम टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इट्स नॉट नो इमेजिनेशन. जी या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर रंजीता खैरा पूछते हैं. डॉक्टर रंजीता कहते हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड लॉसेस इन शेयर मार्केट एंड बिजनेस हाउ टू ओवरकम सच थॉट्स. मैं सोचता हूं ये सिर्फ डॉक्टर रंजीत का प्रश्न नहीं है जो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं. बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके बिजनेसेस क्राइसिस में हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस हैं. तो ऐसे टाइम पे इन थॉट्स को कैसे ओवरकम किया जाए.
इसमें तो आजकल एक एड आ रही है. मैं टीवी नहीं देखता हूँ ज्यादा अभी लेकिन अभी हम फ्री बैठे हैं ना तो टीवी देख रहे हैं. पहले न्यूज देखते देखते भी एड आती है सचिन तेंदुलकर की अभी एक एड आती है कि भाई इसमें क्या बोलते उसको कि मार्केट में जिसको इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो. क्रिकेट की बात है कि भी क्रिकेट में उसी को खेलना चाहिए कि जो रिस्क लेने को तैयार है ना. कि भी बच्चा खेल रहा है कि उसको लग तो नहीं जाएगा तो वो पूछता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हाँ तो कहते हैं जो रिस्क लेने को तैयार है. तो दिस इज द ट्रूथ. यहाँ यू कैन दे थोड़ा लूज मतलब बट यू आर गोइंग टू अर्न यू हैव टू वेट. वॉरेन बफेट जो बोलते हैं कि यू शुड वेट. ऐसा नहीं कि भी एक सेकंड में मुझे कमाना है. वास्तव में अगर शेयर मार्केट की बात करो तो इफ यू आस्क मी नाउ दिस इज अ टाइम टू इन्वेस्ट. Now, if you invest, no, if you can wait for a year or two, you will earn ultimately. Now, capacity honi chahiye. You should be waiting for no, 5 years, 7 years, then only you can earn out of it. Or us rite se calculate karna. Otherwise, to no gambling nahi hai. उस रीति से सोचा जाए तो फिर नेगेटिविटी उसमें नहीं होगी।
जी, बट अक्सर करके ये जो विचार चल रहा है, मैं रंजीत जी के सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आजकल इस बात को सोच रहे हैं,
क्या
ये सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर अगर कुछ और बुरा हो जाए तो, या फिर ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा। ये एक बहुत ही
थोड़ा सा मैं शेयर मार्केट को थोड़ा, ऑल्दो आई डोंट इन्वेस्ट मच, मुझे अभी प्रेजेंटली इट्स डूइंग ओके। इफ समबडी कैन वेट फॉर अ ईयर, नो यू विल अर्न, यू विल नॉट लूज।
जी, मैं एक
सोच नहीं कर रहा है आपको जंगल क्या,
ये कि ये जो ख्याल बार बार बहुतों के दिन में आता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे लोगों के मुख से सुनने को मिलता है। बहुत सारे लोग ये चीज आजकल कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बन गया है, पता नहीं क्या होगा। इसकी वजह से बहुत सारे लोग एक अलग प्रकार के लो फीलिंग के साथ चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो एक
एडजस्टमेंट इज द होल थिंग, हाउ यू यूज दैट टाइम। जैसे अभी हमको फ्री टाइम मिला है 3 महीने का, तो जैसे मैंने अपना सुनाया कि मैंने उसको सही रूप से यूज किया तो आई एम हैप्पी। Although we have earned much less, maybe 5% only of what we are earning otherwise, है ना? लेकिन हमने उसका और रीति से अच्छी रीति से यूज किया, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और नया सीखने के लिए, तो लगता है कि अच्छा टाइम हमने यूज किया, है ना? और वो अनअवॉइडेबल था। क्या अवेलेबल है वो सोचना है, क्या अनअवेलेबल है वो सोच के कोई फायदा नहीं। जो व्यक्ति ये सोचे क्या मुझे नहीं मिला तो दुखी है। ये मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स भी है। आज ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन हमेशा सोचता है कि भी क्या बुरा है, तो हमेशा वो दुखी है। और कई बार लोगों के पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ही अच्छा है, लेकिन वो सोचता है ये चीजें अच्छी है, तो वो व्यक्ति सदैव अच्छा है फिर, है ना? तो हमें लाइफ में वही सोचना है कि भी क्या, नेगेटिव को कभी नहीं पकड़ना है, पॉजिटिव को ही पकड़ना है।
जी, जी। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो साथ में हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजीव शर्मा है हमारे साथ, जो CA की पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं, सर आई एम अ CA स्टूडेंट, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। ऐसे ही एक मिलता जुलता प्रश्न एक और स्टूडेंट से हमारे साथ आया है, और ये भी यही सवाल पूछते हैं कि आजकल पढ़ाई सब कुछ ऑनलाइन होने लगी है, तो इसके लिए हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है। अनन्या बोस हैं और ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं, हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज।
ये पॉसिबल है कि भी पहले ऑनलाइन अगर बिल्कुल नहीं था, और अभी ऑल ऑफ अ सडन 100% ऑनलाइन हो गया, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे भी हमारे जैसे जो लोग हैं, कि हमारे समय में कंप्यूटर नहीं था, तो वी आर तो इलिटरेट इन फैक्ट, जैसे नहीं पहले था ना, पहले के जमाने में कि लोगों को लेटर लिखना नहीं आता था, तो किसके पास जाते थे, भैया लेटर लिख के दो। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हम लोगों की हालत तो ऐसी थी, लेकिन धीरे 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 हमने सीखा ना, तो नाउ नो इवन वी आर एबल टू एंजॉय दिस थिंग्स। उल्टा लगता है कि अभी ये एज में भी हम कुछ नया नया सीख रहे, एक बार सीख लिया फिर तो ईजी है। तो ऐसे ही ऑनलाइन का भी अगर हमने एक बार सीख लिया तो ये बहुत अच्छा मौका है। उल्टा देखो ना, यूट्यूब में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो पहले हमारे समय में किताब को ढूंढना तो कितनी माथापच्ची थी, कि जिसको एक छोटी सी चीज को ढूंढने में शायद 4 दिन लगते थे, वो आपको भी 4 सेकंड में मिल जाती है, वो इंफॉर्मेशन आपको शायद 4 सेकंड में मिल जाती है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन, तो ये करें। और जो पढ़ाई में अगर कंसंट्रेशन की बात है, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात यह सोचनी है कि अब अगर मैं थोड़ा पुश करूं अपने आप को, तो व्हाट नो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू अचीव। एंड ऑनेस्टली अगर मेरी बात बताऊं तो मेरी IQ बहुत कम है। भले हम क्लिनिक में डे इन एंड डे आउट IQ टेस्ट करते, लेकिन मैंने अपनी IQ कभी टेस्ट नहीं किया, डर के मारे की बहुत कम निकलने वाली। मेरे अंकल भी जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि भाई हम मेरे बच्चे तुम्हारे से ज्यादा होशियार थे, लेकिन उसमें से कोई भी डॉक्टर नहीं बना। तुम इसलिए डॉक्टर बने क्योंकि तुम चिपक के बैठ जाते थे और कहीं रहते थे। मैं सैटरडे इवनिंग उनके पास जाता था जब से स्कूल से फ्री होते थे, और मंडे मॉर्निंग तक उनको छोड़ता नहीं था। कहते रात भर तुम मुझे पढ़ते रहते थे, मुझे पूछते रहते थे। तो दैट इज द थिंग है कि ना थोड़ा पुश करने का कि मुझे ये कर बन, जो अचीव, जैसे मुझे वो था कहेंगे ना पैशन कि डॉक्टर बनना है, तो उसका पीछा किया है, तो 3-4 साल में सचमुच वो कैपेसिटी आ गई कि भाई ये कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ाई में बस ये करना है कि आगे का सोचना है। आज हम लोगों की लाइफ बड़ी इजी है, मैं लोगों का तो हम लोग कुछ नहीं करते। आप घर से नीचे उतरो, तुमको ड्राइवर लेके जा रहा है क्लिनिक में, क्लिनिक में लाइन में पेशेंट बैठे हुए हैं, है ना। आपको कोई भी कोशिश नहीं करनी है ना। वापस आराम से आप आ रहे हो, मतलब ना सब कुछ बना बनाया रेडी है। भले अभी भी हम प्रैक्टिस करते, नहीं करो तो भी सर चल जाएगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि 4-5 साल सचमुच उसके पीछे लगे, सब कुछ छोड़ दिया। खेलना, टीवी कुछ भी नहीं, पिक्चर देखना कि ये बस अभी मुझे डॉक्टर बनना है, बनना है, बनना है, वही था एक जैसे नहीं एक पैशन उसके पीछे। तो पढ़ाई का एक बार वो 3-4 साल सचमुच पैशन हो जानी चाहिए कि भी और चीजें सेकेंडरी है, क्योंकि मैं 24 घंटा नहीं पढ़ सकता हूं, इसलिए और चीजें थोड़ी करनी है, बाकी किसमें लगना ही नहीं ऐसे ना। तो ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। और बहुत सारी चीजें बता सकते कि भी बहुत थक जाओ तो थोड़ा जैसे ना रिलैक्स होने के लिए कुछ 3-4-5-10 मिनट का कुछ सिंपल सा तरीका ढूंढ निकालो, कुछ लंबा नहीं सोचने का। आज ना लोग एडिक्ट हो गए, इंटरनेट को एडिक्ट हो गए और चीजों को, फिर उनका बहुत टाइम वहां वेस्ट हो जाता है। जी जी, थैंक यू
जी। अगले प्रश्न पर मैं आगे बढ़ता हूँ। तन्वी सिंह चौधरी है, ये हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं। वो ये कहते हैं कि आजकल के युवा बड़े शहरों में जाते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, और वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बड़े शहरों में कोप अप करने के लिए, हेक्टिक लाइफ होता है। बट इस पैंडेमिक से मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि हमारे प्रियजन, हमारे लव्ड वंस हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट हैं रादर देन मेकिंग अ करियर। तो आजकल के युवाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या वो करियर को बड़ा बनाने के बारे में सोचें, या फिर वो अपने फैमिली या अपने लव्ड वंस को इम्पोर्टेंस दें? दोनों में क्या चीज के प्रति ज्यादा उनका डिसीजन होना चाहिए, वो पूछते हैं।
एक्चुअली बैलेंस रखना है, क्योंकि करियर भी बनाना ही है ना। लव्ड वंस से आप संपर्क रखो। सपोज आपको लगे कि आप छोटे से कोई शहर गांव में है और आपको स्थिति में आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो आइए। भले पेरेंट्स के साथ संपर्क सदैव रखिए, वो संपर्क को छोड़िए नहीं, डेली फोन करिए, उनसे संपर्क रखिए, कांटेक्ट रखिए, उनका हालचाल पूछिए, अपना भी शेयर करिए सब कुछ, है ना। वो जो एक रिश्ता है ना वो बना के रखिए, ऐसे कि नहीं टोटली भूल गए शहर में आए शहर के ही हो गए, ऐसा नहीं। वो आपने अगर ठीक से किया तो फिर शायद तो संबंध भी बना रहेगा और आपका करियर भी बनेगा। और करियर बन गया आपका तो भी फिर ये सोचना है कि भी मैं अपने रूट्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। ये नहीं है कि मैं टोटली बदल गया, अभी गांव, सपोज गांव से कोई लड़का या लड़की आए, अभी वो सब कुछ तो पुराने, ऐसा नहीं कि भी मैं वहीं का हूं, अभी भले यहां पर आया और ये बातें मैंने सीखी तो भी है, परंतु जो गांव की लाइफस्टाइल और सब था वो भी अच्छा ही तो था, वो कोई बुरा नहीं था। नहीं, ऐसे दोनों का एक बैलेंस रखना सीखना चाहिए। जी जी, पढ़ाई के लिए आप जाओ अच्छे से, फिर भी नहीं अगर लगे ना, अभी अपने पे डिपेंड करता है। अभी मेरे ही पास एक साइकेट्रिस्ट बहन है कि जो इंटर्नशिप करने के लिए आई थी, शी वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, वो बॉम्बे में आई, उसने बॉम्बे, फिर मैंने भी बोला तुम इधर रह जाओ, बोलते तो नहीं सर मुझे बॉम्बे में तो बिल्कुल नहीं रहना, मुझे तो जो छोटा शहर है ना वो ही पसंद है, मैं तो खाली तुम्हारे पास सीखने के लिए आई हूं, मैं वापस वही जाने वाली हूं। तो ठीक है, इट्स परफेक्ट ना, छोटा मीडियम टाउन है, वहीं पर मुझे रहना है। नहीं, मेमोरी के लिए पूछ रहे शायद कुछ।
जी, डॉक्टर शिप्रा होम्यो क्लिनिक से, ये यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े, वो कहते हैं सर मेमोरी के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ी देर में कुछ भी भूल जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या करें, क्या मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाए?
अच्छा अच्छा अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो मेमोरी का दो एस्पेक्ट है कि एक तो अगर हम भूल जाते हैं, अगर हमें लगता है कि मैं भूल जाता हूं तो फिर कई पॉसिबिलिटी है कि भी हम टेंशन में हैं, मामूली हमको डिप्रेशन फील हो रहा है और कुछ तो, और अगर दूसरों को लग रहा है, फैमिली मेंबर्स को लग रहा है कि ये भूल जाते हैं तो फिर एंटायर जो डिफरेंट चीज है कि अल्जाइमर की पॉसिबिलिटी है कि जो ओल्ड एज में होता है। तो अगर हम भूल जाते हैं तो हम एक थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड को हैप्पी पॉजिटिव बना करके इसको अच्छा बना सकते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा करके हम मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम एसोसिएट करके मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अगर स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा बनाए तो भी हम मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे नहीं, बहुत सारे तरीके हैं कि जिसके द्वारा हम अपनी मेमोरी को अच्छा बना सकते हैं।
जी, एक और दोस्त हैं जो शिवानी कुमारी हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं और वो कहते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ लेजीनेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन। इससे मिलता जुलता एक और सवाल है जो सुधांशु समाल पूछते हैं। सुधांशु हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, वो कहते हैं भाई जी मेरे एक बुरी आदत है जो नहीं जाती है, कुछ दिन कंट्रोल करता हूं मगर फिर से वही हो जाता है। ये सवाल पूछते हैं, ये हमारे यंग दोस्त।
क्या क्या आदत है, क्या 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 आदत है,
कोई उनकी जो बुरी आदत है,
कौन सी
बुरी आदत है?
अच्छा कुछ कोई भी, अच्छा अच्छा
बुरी आदत
डिफरेंट चीज आर डिफरेंट थिंग। लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन जब कहते हैं ना तो अब एक तो है ना उसका रूट कॉज ढूंढना चाहिए। कई बार जब हम वो प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं कि भी एक चीज अभी जैसे मुझे करना है हम करते ही नहीं है, तो कई बार हमें यह लगता है कि भाई मैं ये कर नहीं पाऊंगा, या तो सब जो मैंने कर लिया ना तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा कुछ तो ऐसा। फॉर एग्जाम्पल कि भी कोई कंपनी में है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, उसे लगता है मैंने प्रोजेक्ट सब कंप्लीट कर लिया तो बॉस उसको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। यह मैकेनिज्म सबकॉन्शियसली होती है, उसे अच्छा करूं ही क्यों। या तो ऐसे कि भी मुझे कुछ इसका रिजल्ट दिखने वाला नहीं है इसलिए मैं करूं ही क्यों, है ना। या तो भी बहुत सारे प्रोक्रेस्टिनेशन के, लेजीनेस भी एक रीजन हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन का कि भी व्यक्ति में अंदर ही नहीं आलस भरी हुई है, वो आलस के कारण ही वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है ना। तो अभी वो आलस को कैसे दूर करना, अभी आलस को दूर करने के लिए भी ना एक तो कहेंगे कि कंपल्शन क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल सवेरे उठना है ना बहुत मुश्किल काम है। आज कई लोग है कि भी बहुत सोच के सोचते कि भी सवेरे उठने ही वाला हूं, उठने ही वाला हूं, अलार्म लगा के भी सो जाते हैं लेकिन अलार्म बंद करके भी सो जाएंगे मालूम ही नहीं है ना। तो कुछ तो कंपल्शन क्रिएट करना चाहिए। एक व्यक्ति ने तो ऐसा किया कि भी अलार्म को बहुत दूर रखा, एक बॉक्स में रखा, उसके अंदर दूसरा एक बॉक्स रखा, फिर तीसरा बॉक्स रखा, उसको बांध दिया और फिर दूर रख दिया, और फिर जब अलार्म बजने लगा तो तब तक अभी उसको बंद करना है तो इजी नहीं था। एक को खोला, दूसरे को खोला, तीसरे को खोला, फिर बंद किया तो तब तक नींद उड़ गई थी। जैसे तो एक एग्जाम्पल है कि भी ऐसा कुछ कंपल्शन क्रिएट करो कि तब तक वो काम होगा ही होगा ना, तो फिर आपको फिर वो करना ही पड़ेगा। जैसे चाइना में कहते हैं, ये डिफरेंट चीज है परंतु इसमें भी आलस की बात मिलेगी। चाइना में ऐसा कहते हैं कि भी बच्चे क्या करते, कहीं रॉक पे चढ़ना हो ना तो भाई रॉक पे चढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है तो क्या करेंगे, पहले ही अपने शूज रॉक पे डालेंगे, अभी वहां चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि शूज ऊपर गए। अभी दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है कि नहीं चढ़ूं, कैसे भी करके चढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे कि कुछ भी कंपल्शन करो कि अभी वो काम करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो कोई पुश करे, कुछ एफर्मेशंस भी दे सकते, जैसे स्वमान देते ऐसे भी कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा आप स्वमान दो तो भी आप में थोड़ा एनर्जी आएगी। और एक बार करने लगो ना, आपको दो चार बार रिजल्ट मिल गया ना, फिर तो एकदम इजी लगेगा कि ये काम अभी मेरे लिए इजी है। जब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है तब तक लगता है कि होगा या नहीं होगा, है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे में आलस है ऐसे। जी जी
जी, अगला सवाल जो आप कह रहे थे सुधांशु समाल जी का, वो प्रश्न है कि वो पूछ रहे थे कि जो बुरी आदत है वो नहीं जाती है, कुछ दिन कंट्रोल करते हैं फिर वो चीज वापस आ जाती है। इसके ऊपर आपने ये कहा कि भाई कोई हम ऐसी चीज उसके लिए बना के रखें कि हम वापस उस चीज के प्रति वापस नहीं जाते।
नहीं नहीं, अभी बुरी आदत का दूसरा, बुरी आदत लेजीनेस का मैंने बोला, अगर बुरी आदत का बोला है ना तो उसके लिए फोर्स भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी इंटरनेट का कईयों को होगा, अभी हमने भी है, पहले मुझे मालूम नहीं था, अभी लोगों ने आके बोला पबजी ये गेम की बहुत यूथ को है ना एडिक्शन हो गया, अभी नया एडिक्शन, तो भी वहां एक तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भी आई एम एडिक्टेड। एक तो उसको डिलीट कर दो चाहिए तो सबसे अच्छा रास्ता, बोले दो चार दिन एंग्जाइटी होगी, तकलीफ होगी, ये ऐसा कुछ कि भी उस समय वो मम्मी पापा को दे दो कुछ स्पेसिफिक टाइम कि भाई मैं एक घंटा दिन में दो बार रखूंगा, फिर कितनी भी एंग्जाइटी वो दे देना, वो आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें एडिक्टिंग है, इवन सोशल मीडिया एडिक्टिंग है, तो उस पर है ना एक थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा। कॉन्शियसली भी अपने आप को सोच सकते हैं कि भी एडिक्शन का मुझे 0.5% भी बेनिफिट नहीं है, इससे मुक्त होने में ही फायदा है, भले फिर मैं अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाऊं, भले मेडिटेशन करूं, फोर्स करूं, इवन ऐसी मेडिसिन भी होती है विच कैन इवन हेल्प, कि जो भी प्लेजर है। एडिक्शन बहुत प्रकार के, गेमलिंग का एडिक्शन होता है, ड्रग्स का एडिक्शन होता है, तो वहां पर सम मेडिसिन कैन हेल्प, बट विदाउट मेडिसिन टू ट्राई इज द बेस्ट थिंग।
जी जी, एक और प्रश्न है जो हमारे दोस्त पूछते हैं, प्रिया हमारे साथ है, हाउ डू वी से नो टू समथिंग बट इट मे हर्ट समवन एल्स, दिस मेक्स मी फील गिल्टी फॉर नॉट हेल्पिंग। बहुत बार ऐसे होते हैं हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे होते बट हम ना नहीं कह पाते, इसलिए हमें लगता है कि उससे लोग फील हर्ट फील करेंगे, बट इसकी वजह से अंदर हम गिल्टी भी फील करने लगते हैं कि भाई हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से भी हम ना नहीं बोल पाते। तो इसके बारे में क्या कहें, कैसे हम ना बोलने के बारे में सोचें?
इट्स अ गुड, रियली साइकोलॉजिकल गुड क्वेश्चन, कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर सेल्फ। आप हां बोल के बाद में दुखी होने वाले हैं तो उससे अच्छा ना बोलना अच्छा है। बहुत सारी चीजों में कुछ हेल्प करने की बात है कि भी फिर आप सफर होंगे तो उससे अच्छा तभी ना बोलना अच्छा है। सपोज भी किसी ने मेरे से पैसा मांगा और मुझे मालूम है कि मोस्टली वो वापस नहीं लौटा पाएगा तो तभी ना बोलना अच्छा है। और अभी इसकी ये जो साइकोलॉजी है ना, वहां तो कई लोग आपको इमोशनली कंट्रोल करते हैं, उनको मालूम है कि मैं नाराज हो जाऊंगा ना तो ये व्यक्ति करने वाला है, तो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं, वो बस वो नाराज हो जाएंगे तो आप भले अपना सब कुछ छोड़ के भी उनको हेल्प करने जाएंगे। एक्स्ट्रा टाइम में जरूर करो, ये बात नहीं है कि भी हेल्प करनी चाहिए। हम लोग भी सोचते कि सारे दिन में एक दो घंटा हमें सोशल वर्क के लिए निकालना चाहिए, महीने में भी दो चार दिन आपको निकालने चाहिए, लेकिन आपको लगे कि वो बहुत ज्यादा हो रहा है और अल्टीमेटली आप सफर होते हैं तो ना बोलना ही अच्छा है और एक आदत डालनी पड़ेगी और वो बुरा नहीं है, भले उसका रीजन दो, रीजन दे करके करो, स्लोली करो, लेकिन ना नहीं बोलेंगे ना तो उल्टा आपका पीछा करेगा वो, उसे जिसको बोलते हैं ना assertive बिहेवियर इज वेरी मच necessary। थैंक यू,
थैंक यू डॉक्टर साहब जी। बहुत सारे दोस्त हमारे फीडबैक भी दे रहे हैं, वो प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो कमेंट्स भी लिख रहे हैं, कमेंट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। हम लोग कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल लें और आपके कमेंट्स में नहीं पढ़ता हूँ दोस्तों। मेरे पास एक और प्रश्न है, ये कोमल लहवानी जी का प्रश्न है। कोमल हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, वो कहते हैं मुझे बार बार लो फील होता है, मेरे दो किड्स हैं, दो बच्चे हैं इनके, और सब ठीक है, मेरे लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं लो फील करती हूँ, मेंटली मैं लो फील करती हूँ फ्यूचर को लेकर, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो जैसे मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत ही लो फील करना शुरू करती हूँ। तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे कोमल जी?
इमीडिएटली आस्क योरसेल्फ, क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है? आंसर आएगा नो। बोले मुझे एफर्ट करने दो, अगर अभी आप 8 घंटा काम करते हो 9 घंटा करो, 10 घंटा करो, है ना। सपोज अभी आप सेव करते हो, थोड़ा और कुछ सेव करो, और बच्चों का ध्यान दो, उनके प्रति समय दो, मेडिटेशन करो और सब करो, लेकिन वो लो फील करने से थोड़ा भी बेनिफिट होने वाला नहीं। बस एक तो पक्का करना है ना, मेडिटेशन भी करिए, मेडिटेशन भी हेल्प करेगा, पॉजिटिव अप्रोच लाइए, इवन एक ओवरऑल भी सोचिए कि सपोज कि सब कुछ नेगेटिव हुआ तब भी शायद कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बहुतों का आज कईयों को हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो भी एकदम सीरियस प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तब सोचो कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीस ऑफ माइंड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैप्पीनेस, और चीजों को मैं एडजस्ट कर लूंगा। और आप एफर्ट करो तो ऐसा होने के चांसेस 1-2% है, 98% तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ भूकंप हो गया, बिजनेस में बहुत बड़ी समस्या हो गई, किसकी डेथ हो गई, वो तो रेरेस्ट ऑफ द रेयर है, अदरवाइज नहीं होनी है। और हमें कोई बहुत बड़ा दिखावा नहीं करना है, हम तो एक बेसिक लाइफ अच्छे से लीड करना चाहते, एक ऑप्टिमम लग्जरीज चाहते हैं, और अंदर में विजडम को एक्वायर करना है। व्यास इतना टाइम नहीं है, परंतु मेरा तो सजेशन हमेशा ये होता है कि भाई ये ह्यूमन लाइफ हमारी है, उसमें लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे विजडम को एक्वायर करना है। हमने ऑलमोस्ट 200 छोटे छोटे डेली विजडम बनाए, वो यूट्यूब में है बहुत सारे डेली विजडम, 2-2 मिनट्स के, उससे भी है ना लाइफ में जब हम लो फील करते हैं तो पॉजिटिविटी लाने में डेली विजडम बहुत मदद करते हैं। जी जी।
अगला एक प्रश्न है जो मैं 2-3 प्रश्नों को कलेक्ट करके पूछ रहा हूँ। अभय मिश्रा हमारे साथ हैं, वो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं हाउ टू हैंडल वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड बॉस। इससे मिलता जुलता कुछ सवालों को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों ने ये पूछा है कि आजकल बहुत कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है कि हम लोगों को देख नहीं पाते, फोन कॉल पे ही बातें हो जाती हैं, टास्क असाइन कर दिए जाते हैं, ईमेल से ही हम लोग कम्युनिकेट करने लगे हैं, क्योंकि वो फिजिकल इंटरेक्शन कम होने की वजह से हमें लगता है कि हम पे ज्यादा काम दिया जा रहा है, वर्क प्लेस का स्ट्रेस हमारे ऊपर डाला जा रहा है, और कहीं कहीं पर हमें लगता है कि जो हमारे बॉस हैं या सुपीरियर्स हैं वो लोग हमें गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो ह्यूमन टच जो है वो मिसिंग हो रहा है, तो ऐसे में स्ट्रेस ज्यादा महसूस हो रहा है। ऐसे में आप क्या गाइड करना चाहेंगे लोगों को?
जो बातें मैंने बताई उसके अलावा कहना है तो टेक वर्क एज ए चैलेंज। जब आप चैलेंज के रूप में लेते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, कम नहीं होती है। और अगर काम को चैलेंज के रूप में लेना है तो ये 3 F को याद रखो, फेस इट, फुलफिल इट एंड बिकम फ्री। उसको फेस करो, दे हैव नो एनी वर्क एज अ स्पेसिफिक लाइक नो थिंग टू फुलफिल, तो फुलफिल इट एंड बिकम फ्री। एक मैं आपको स्लोगन देता हूं, वो भी याद रखो, कहते हैं कि फेंक दो हमारी जिंदगी को, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, सर करेंगे आखिर सब मोर्चे कि आने दो मौत को भी सामने। ये भी कहा गया है कि आजमाइश कड़ी हो तब ही मजा आता है, तब तो हम आग को गुलजार बना देते हैं, गुलजार मतलब बाग। तो ऐसे जब चैलेंजिंग चीजें आए ना, तब तो उल्टा हम अगर अच्छे से करें ना तो वी कन्वर्ट अवर स्ट्रेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, है ना, वो अच्छे से हो सकता है ना, वो एक पॉजिटिव अप्रोच, उससे सीखो। जैसे अभी बॉस की बात है ना, तो बॉस के नेचर को समझ करके ट्राई टू फुलफिल हिज एक्सपेक्टेशंस। कहीं पर है ना बॉस कुछ एक्सपेक्ट करता है तो वैसा करो। आप तो सोचो कि मैं करता हूं वो राइट है, बॉस कहता है वैसे करो। आप भी अपनी बात भी बॉस को बता दो, इफ ही अग्रीज वेल एंड गुड, इफ ही सेज नो डू एज आई से देन डू व्हाट ही सेज, because boss is always right, he may not be right, लेकिन वो चाहता है कि भी मैं कहता हूं वैसे करो तो वो कहता है वैसे करो, है ना। इवन मेडिटेशन कैन हेल्प, अभी नहीं, वर्क फ्रॉम होम है तो उल्टा अच्छा है कि बीच बीच में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको तो अल्टीमेटली तो वर्क देना है।
जी। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ हमारे पास आज सवाल बहुत ज्यादा है, बट मैं आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं।
नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है।
हमारे बहुत सारे दोस्त कई दिनों से बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, उनसे मिलता जुलता प्रश्न है। ऋषि पूछते हैं यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े, वो कहते हैं आई एम हेजिटेंट इन कंसल्टिंग एनी साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट शुड आई। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो
बहुत है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। या एक्चुअली अभी स्टेटिस्टिकली भी कहो तो 30% नीड्स साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हेल्प, लेकिन जाते हैं 3-4%। क्यों? डिफरेंट थिंग है। एक तो कि लोग मुझे मेंटल कहेंगे, वो कहेंगे कि मैं मेंटली सीख हूं क्या, या तो मुझे लाइफ लॉन्ग दवा लेनी पड़ेगी, दवाइयों की साइड इफेक्ट हो जाएगी, यह चीजें हेल्प नहीं करती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ मेंटल इश्यूज कैन बी रिजॉल्व विदाउट मेडिसिन, ओनली काउंसिलिंग एंड साइकोथेरापी कैन रिजॉल्व। अगर आप तुरंत ट्रीटमेंट लेने गए तो कितना ना बड़ा प्रॉब्लम हो, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो, आपने तुरंत ट्रीटमेंट की तो वह भी क्योर हो सकता है। जो हम पेशेंट देखते हैं वो वही है कि भी जिन्होंने शुरू में ट्रीटमेंट नहीं ली, शुरू में तो वो ज्योतिष के पास गए, वो धागा बांधने गए और कुछ मंदिरों में गए, उन्होंने डॉक्टर की ट्रीटमेंट नहीं ली, डॉक्टर के पास तब गए तब वो बहुत पुराना केस हो गया, फिर सिजोफ्रेनिया और जो बीमारियां है वो ठीक नहीं होती है, वो सिर्फ कंट्रोल में आती है। और ठीक से अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट दे तो दवाइयों की साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। और बीच में एक प्रश्न भी था शायद कि जो हमने नहीं लिया, कि प्रोफेशनली डॉक्टर कभी भी रिवील नहीं करेगा पेशेंट का नाम, वो किसी को नहीं बताएगा, तो योर आइडेंटिटी इज कॉन्फिडेंट, किसी को पता नहीं होगा कि आपको कुछ डिप्रेशन था या कुछ बीमारी थी। इसलिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं करो, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की जरूर ट्रीटमेंट लो। थैंक यू। मेडिटेशन भी करो, पहले चाहे तो मेडिटेशन करो, या अच्छा डॉक्टर होगा तो वही बोलेगा कि आप मेडिटेशन करो।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में भी बताया और हमें समय पर हेल्थ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से जहां
नहीं, कोई चाहे तो हमारा संपर्क भी कर सकते, दे वॉन्ट नो इवन दे कैन कॉन्टेक्ट अस बाय ईमेल और बाय फोन ऑल्सो।
जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वी हैव कम टू ऑलमोस्ट एंड ऑफ द प्रोग्राम। आपके साथ बातें करते हुए लगभग एक घंटा बीत गया और बहुत सारे सवालों के आज आपने जवाब दिए, और कोशिश यही रही कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आज लोगों के सवाल ले सकें, और आपने बहुत क्विकली बहुत ही एफिशिएंट आंसर्स दिए। मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त इन चीजों को यूज कर पाएंगे, और पॉजिटिव चेंज के बारे में आपने जो बात कही कि हम कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी का सोर्स ढूंढें और मेडिटेशन करें, ये सारी चीजें जो आपने गाइड की फायदेमंद रहेंगी। क्योंकि आप मेडिटेशन के बारे में बोल रहे थे तो मैं हमारे सभी दोस्तों को यही इनवाइट करूंगा कि अब हम डॉक्टर पटेल के साथ कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेशन में स्पेंड करेंगे, 3-4 मिनट ही हमारे पास टाइम है। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने इतने सारे मैसेजेस और क्वेश्चंस हमारे लिए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मैं डॉक्टर पटेल जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर पटेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारे सभी दोस्तों की तरफ से थैंक यू आपको। मे आई नाउ प्लीज रिक्वेस्ट यू टू लीड अस थ्रू मेडिटेशन फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स।
जी, इट्स वेरी सिंपल। आपको कंफर्टेबली बैठना है जहां भी आप बैठे हैं, राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से भी किया जाता है, परंतु आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। सारे शरीर को स्थिर रखना है, मन को शांत करिए, अपने विचारों को ही फील करिए कि मन में क्या विचार आ रहे हैं। जैसे ही आप अपने मन के विचारों को फील करने लगते हैं, विचारों की गति शांत हो जाती है। अब यह सोचिए कि विचार कहां से उद्भव हो रहे हैं, ये विचार आत्मा में निर्माण हो रहे हैं, जो अजर अमर और अविनाशी शक्ति है, यह अविनाशी दिव्य ज्योति आत्मा में विचार निर्माण होते हैं। जैसे ही मैं आत्मा के बारे में सजग होता हूं, शांति का अनुभव होता है, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जैसे ही मैं इंटरनलाइज होता हूं, मेरी आंतरिक शक्तियां भी मैं रियलाइज कर पाता हूं कि मेरे अंतर मन में जबरदस्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों को मुझे रियलाइज करना है, उनका सदुपयोग करना है, तो यह जीवन मेरा सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। जो भी कार्य मैं कर रहा हूं, पूरी तरह से डिटैच होकर के कर पाऊंगा। जो भी कार्य मैं कर रहा हूं, पूरी तरह से डिटैच होकर के कर पाऊंगा। परमात्मा मेरा साथी है, वह अनसीन दोस्त है, उसे मैं देख नहीं सकता हूं, परंतु वह मेरा अनदेखा दोस्त सदैव मेरे साथ है, हर परिस्थिति में मुझे मदद करता है, मुझे शक्ति देता है, मुझे सहयोग देता है, एक मित्र की तरह सदैव मेरे साथ है। सदैव उन्हें साथ रख करके इस जीवन को मैं सर्वश्रेष्ठ बनाऊं। इस जीवन में बिल्कुल हल्का, शांत और पॉजिटिव बन करके इस जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाऊं। मैं देह और देह की दुनिया के बारे में सजग होता हूं, परंतु यही आंतरिक स्थिति को कायम रखते हुए ही सारा कार्य करना। ओ शांति, शांति, ओम शांति, ओम शांति जी, ओम शांति।